नमस्कार दर्शकों, आह्वान इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे साथ राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी गीता दीदी हमारे साथ हैं। ओम शांति गीता दीदी।
ओम शांति।
जैसे आपके प्रश्न और आपकी ईमेल्स हमें मिलती रहती हैं और हमारी दीदी उनके आंसर्स, आपके जो क्वेश्चन होते हैं उनके बहुत अच्छे तरह बताते हैं। दीदी, मैंने एक बार टीवी में देखा कि एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया है बिकॉज उसको शक था कि उसका रिलेशन किसी और के साथ है। तो अब उसने मर्डर कर दिया, उसकी छोटी सी बेटी है 3 साल की। अब दीदी, बेटी की तो कोई गलती नहीं है क्योंकि वो छोटी सी मासूम सी, और उसके हस्बैंड को ये रहता था कि हाँ इसका रिलेशन है, शक की वजह से उसने कर दिया उसका मर्डर।
इस घटना को आपने देखा, अगर आप इसको शांत चित्त से ऑब्जर्व करते हैं तो समझ में आता है कि एक तो आज व्यक्ति कितना बिन जवाबदार बन के इरेस्पॉन्सिबल होकर जीवन में चल रहा है। जब आपने एक स्त्री से अपना जिंदगी जोड़ी और एक बच्चा भी पैदा किया तो हमें उसकी कितनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए। आज आपको शंका है अपनी पत्नी में कि उनका दूसरे किसी से रिश्ता है, तो कभी बैठ के पूछो तो सही, क्लियर तो करे, सत्यता क्या है ये पूछो तो सही, एक बार दो बार तीन बार इंक्वायरी करो, उसके प्रमाण इकट्ठे करो, रियलिटी है या सिर्फ शंका ही है। और तीसरी बात कि आज शंका भी है, मान लो सत्य भी है कि आपकी पत्नी के दूसरे से संबंध है, तो हमें उसको मार डालने की क्या जरूरत है कि भी आपका ऐसा ऐसा है तो फिर मेरे साथ बेवफाई से रहने का कोई मतलब नहीं, आपका मन जहां लग रहा है वहां आप चले जाइए, अपने बड़ों को बताइए, बड़ों को बिठा के ये सारी बातें करिए। पर आज किसी के जीवन को ही खत्म कर देना ये मानवता तो नहीं है। हम मालिक बन गए दूसरे के जीवन के और मालिक बन के हमने उनके जीवन को खत्म कर दिया, तो ये अधिकार हमें किसने दिया है? बेटर ये है कि चलो भाई, शंका है या सत्य है, आप उनके साथ नहीं चलना चाहते हैं तो अलग हो जाइए।
बट किसी का मर्डर
नहीं करना चाहिए। हर इंसान को जीने का अधिकार है। ठीक है, हमारे रिश्ते में वो ठीक नहीं है, और बड़ों को बिठा के भी तो हम बात करें ना। आज जो हमने अपने बड़ों को, बुजुर्गों को एकदम जो निग्लेक्ट कर दिया है ना, उसी का ये परिणाम है।
उनको अवॉइड करते हैं।
पहले हमारे जीवन के हर बात में बड़े बीच में आते थे, आज हमें वो इंटरफियरेंस लग रहा है, जबकि इससे हमें फायदा था। जो हम जीवन में अविवेकी कदम उठाते थे, हमारे बुजुर्ग लोग हमें रोकते थे, कंट्रोल करते थे, क्योंकि वो अपने जीवन के अनुभवी थे। अब हमें उन अनुभवी लोगों का सुनना नहीं है, मानना नहीं है। गुस्से में अविवेक से कोई भी कदम हम उठा लेते हैं और उसके बाद हम खुद भी तो शांति से नहीं जी सकते। आज एक छोटी सी बच्ची आपकी, अब उसने तो माँ का साया गंवाया ना, उसका क्या गुनाह है? आज आप दूसरी शादी कर लेंगे पर इसकी जीवन तो खराब हुई ना, कि दूसरी माँ उनको स्वीकारेगी नहीं स्वीकारेगी, कौन उसको पालेगा, कौन उनको संस्कार देगा, कौन उसको सलामत रखेगा? मैंने ये जवाबदारी, ये तो हम सोचते ही नहीं है। बच्चा पैदा कर लेना, माना एक पिता बनना, कितनी जवाबदारी की बात है। आज हमने पत्नी को भोग लिया, वासना अपनी पूरी कर ली, जबकि आपको उसमें शंका थी, तो आपका काम था बैठ के स्पष्टता करना। एक बार, दो बार, चार बार, किसी को मौका तो हमें देना चाहिए ना सुधरने का। उनके माँ बाप को बुलाते, उनकी फ्रेंड्स से बात करते, अपने परिवार के बड़ों को बुलाते, आप अपने फ्रेंड्स के आगे इनकी बात करते, मतलब दो चार बार हमें किसी को मौका देना चाहिए। और उसके बाद भी अगर लगता है कि सच में ऐसा है तो दोनों अपने रास्ते अलग कर लो और खत्म नहीं कर।
पर दीदी, जैसे टीवी में दिखाया था, उन्होंने बोला कि उन्होंने अपनी वाइफ को तीन बार किसी के साथ देखा और उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया, तो उनके भाई ने बोला, लड़की के भाई ने बोला कि हम अपनी बहन के साथ रिलेशन नहीं रखेंगे, ये अच्छी नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, तो डिप्रेशन में आके उन्होंने कहा कि मैंने फिर एक नाइट में जैसे ड्रिंक की हुई थी और उनका मर्डर कर दिया।
अब पहले तो इसकी अपनी जवाबदारी है कि खुद माँ और बाप दोनों बनके, माँ का भी रोल अब भाई को ही प्ले करना पड़ेगा, बच्ची को पालना दे, उसके लिए व्यवस्था करे, सोचे, संस्कार दे। आज कोई भी रिश्ता आप जोड़ेंगे, कोई भी परफेक्ट मिलने वाला नहीं है। आज आप दूसरी शादी करेंगे, दूसरी स्त्री को ले आएंगे, उसमें कोई और कमी होगी, किसी में कोई परफेक्शन तो नहीं है, ना हमारे अपने में है कि हम हर बात में ठीक है, हम भी नहीं है। चलो आज आपने गुस्से में अविवेकी होकर ये कदम उठाया, पत्नी की हत्या की, तो ये आपकी कौन सी अच्छी बात है, ये भी तो आपकी कमी है ना, ये गलत बात है। तो आपने गुस्से में आकर उसकी हत्या की, ये भी तो गलत बात है। तो हमें जीवन की ये वास्तविकता समझनी चाहिए कि न हम पूर्ण हैं, न हमारे साथी पूर्ण है, तो हमारे में भी कोई ना कोई डिफेक्ट है, उसमें भी कोई ना कोई डिफेक्ट है।
तो हमें कोई अधिकार,
तो हमें एक दो की कमजोरियों को समझना चाहिए और जहाँ तक हो सके मिलके चलो, मिलके नहीं चल सकते हो तो अलग हो जाओ, पर खत्म तो नहीं
करो किसी को।
इतनी हद तक तो हमें अपना खुद पर का संयम नहीं गंवाना चाहिए। तो अब बेटी की जवाबदारी संभालनी चाहिए,
उनके पेरेंट्स को, उसके
उनके
पापा को
ही संभालनी चाहिए। अपनी वासना को छोड़ो, दूसरी शादी की बात छोड़ो, पहले बच्ची को पालो, अच्छे संस्कार दो, ध्यान दो, आप ही उनके रचयिता है, तो ये जवाबदारी तो उठानी पड़ेगी ना।
उनको जेल हो चुकी है, अब लड़की घर में अकेली है, तीन साल की बच्ची, उसको संभालने वाला कोई नहीं है,
बच्ची तो क्या करेगी, अब गवर्नमेंट या पुलिस बच्ची को अनाथ आश्रम में देंगे। ये तो समझो समाज में फिर भी ये व्यवस्थाएं बनी हुई है कि ऐसे बच्चों को फिर भी ये संस्थाएं पालती है। आज अनाथ आश्रम है या विधवाओं के लिए भी स्थान बने हुए हैं, या त्यक्ताओं के लिए विकास गृह बने हुए हैं, या बूढ़े माँ बापों के लिए वृद्धाश्रम बने हैं। हमारे समाज में अभी भी लोग अच्छे हैं, कई लोग हैं जिसमें अभी भी मानवता है, और उन्होंने ये सारी बातें सोच के ये संस्थाएं बनाई हुई है। अब बच्ची तो मासूम है, वो क्या सोचेगी, अब गवर्नमेंट या संस्था या जो भी है उनको अनाथ आश्रम में रखेंगे, कोई माँ बाप उसको एडॉप्ट करेंगे, अब उनके भाग्य में जो लिखा होगा वो उनके साथ होगा।
पर दीदी, एक इंसान ने 18 बार चाकू डालना पेट में,
इससे ही हम समझ सकते हैं कि उनके मन में शंका के चलते कितना गुस्सा भर गया, जो वो एक हिंसा का रूप ले लिया और एकदम उस व्यक्ति को असुर बना दिया।
तो दीदी, दुनिया में ये शक की चीज को ही पहले मिटाना पड़ेगा, और वो शक हम सब ही मिटा पाएंगे तभी।
शक मिटाने के लिए दोनों साइड से प्रयास करना होगा कि पत्नी और पति दोनों जब संबंध जोड़ते हैं तो फिर वफादार रहे। जब आपसी संबंधों में, पति पत्नी के संबंधों में बेवफाई आती है तो उसका रिजल्ट तो गलत ही आएगा। तो और दूसरा, जो भी समाज टीवी में ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, जरूर उससे सबक तो सीखेंगे कि आज पति बनने का मतलब ये नहीं है कि आप उनके मालिक बन गए और कुछ भी आप उनके साथ करें। ये एक रिश्ता जरूर है, पर इससे आप उनके ऑनर नहीं बन जाते। स्त्री कोई संपत्ति या चीज नहीं है जो आप मालिक बन जाएं और जैसे चाहे ऐसा व्यवहार करें। भले हम प्यार से रहे, वफादारी से रहे, एक दो के सहयोगी बने, पर हमें समझना चाहिए कि कुछ भी स्वभाव संस्कार हमारे नहीं मिले या हमें एक दो के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हुए तो हमें समझ से मिटाने हैं, और अगर नहीं मिट सकते हैं तो खुशी से अलग हो जाइए, पर खत्म मत कर दीजिए एक दो को। इतनी तो मानवता हम रखें, इतना अविचारी हम न बने कि गलत कदम उठा ले। चलो आज सेपरेट हो जाते तो कम से कम पत्नी अपनी बच्ची को साथ लेके तो जाती, नहीं बनती है तो साथ मत रहिए, पर अपनी जवाबदारी के हिसाब से उनको जीवन यापन करने के लिए पैसे दीजिए, कुछ व्यवस्था कीजिए। मानवता तो नहीं खत्म कर देनी चाहिए
जैसे उन्होंने किया।
हाँ, कहते ना, जिसको आप जीवन नहीं दे सकते उनको आप मार भी तो नहीं सकते।
राइट राइट दीदी, जैसे मैं देख रही हूँ आज के टाइम में हस्बैंड वाइफ शादी हुई, साथ में रहे, बट उसके बाद वाइफ का किसी और के साथ अफेयर है या हस्बैंड का किसी और के साथ अफेयर है, तो दीदी इसको कैसे खत्म करें, इसको कैसे रोकें, तो इसके लिए क्या करें दीदी?
इन परिस्थितियों को निपटाने के लिए हमें दो तीन चीजें करनी चाहिए। समाज के तरफ से, सरकार के तरफ से, क्योंकि आज कानून तो बना देते हैं पर जब तक मनुष्य की मानसिकता को हम नहीं बदलेंगे और हमारी एक दो की नजर में एक दो का जो महत्व है जब तक वो नहीं आएगा, हम कितने भी कानून बना दे ये परिस्थिति में परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। जैसे आप कह रही हैं कि दिन प्रतिदिन ये बढ़ रहा है क्योंकि हम मानसिकता को चेंज नहीं कर पा रहे हैं कि हरेक इस संसार में जो भी आया है, माना हर इंसान को अपना जीवन गौरव से जीने का अधिकार है। अगर हमें एक दो के लिए ये गौरव, डिग्निटी और रिस्पेक्ट की नजर होगी तो हम, चलो हमारा उनसे संबंध नहीं रहा पर हम उनके एग्जिस्टेंस को वैल्यू जरूर देंगे। उसके लिए हमें एक तो कुछ पारिवारिक रिश्तों और जीवन को महत्व देना चाहिए। आज जो हर कोई अलग होके जी रहा है और बुजुर्गों के छत्र छाया नहीं मिलती है और उनके अनुभवों का जो लाभ नहीं मिलता है, उसके कारण ये ज्यादा हो रहा है। कॉन्फ्लिक्ट्स तो पहले भी होते थे पर बुजुर्ग समझाते थे। आज जो एक दुनियावी की पढ़ाई से या आज के इन्फॉर्मेशन के युग में जो हमें इन्फॉर्मेशंस मिलती है, इससे जो एक बुद्धि का अभिमान जो आ गया है ना कि हम दूसरों की बात को सुनते नहीं, उनके अनुभवों को वैल्यू नहीं देते, ये हमें कम करना होगा। दूसरी बात कि जीवन में कुछ नैतिक आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत है ताकि सिर्फ हम बॉडी कॉन्शियस और मटीरियलिस्टिक न बने। चीजों को भोगते भोगते या मटीरियलिस्टिक बनते बनते हमने इंसान को भी एक भोग का साधन ही समझ लिया। माना एक मनुष्य के साथ जो हमारे संबंध है वो संबंध जैसे एक चीज और वस्तु के साथ है ऐसे बन गए, तो उसके लिए नैतिक और आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है। आध्यात्मिकता हमें समझाती है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, हम एक चैतन्य शक्ति आत्मा है, स्त्री शरीरधारी हो या पुरुष शरीरधारी हो, हरेक एक चैतन्य अस्तित्व है, हरेक का महत्व है, हरेक का रोल अपना अपना है और हरेक का रोल यूनिक है। जब तक हमें एक दो के लिए ये गौरव और रिस्पेक्ट का दृष्टिकोण नहीं बनेगा, हम छोटी छोटी बातों में ही या तो व्यक्ति को खत्म करेंगे या रिश्तों को खत्म करेंगे या परिवार को खत्म करेंगे। और अल्टीमेट उसका रिजल्ट क्या आएगा कि हम ही टेंशन में आएंगे या डिप्रेशन में जाएंगे या गलत काम करके हम ही अपनी जिंदगी को बर्बाद करेंगे, जैसे इस भाई ने पत्नी का खून करके अब वो जेल में गया, क्या फायदा हुआ?
कुछ नहीं,
ना अपना जीवन ठीक से जिएगा,
ना बेटी
पत्नी को तो खत्म ही कर दिया और बच्ची के जीवन को भी बर्बाद कर दिया,
तीन की लाइफ बर्बाद हो गई।
तो आवश्यकता है लोगों में शांति हो, धीरज हो, थोड़ा गौर से सुने सोचे, ये चीज ही जीवन से चली गई है, क्योंकि हमें जीवन में शांति से बैठने का, ध्यान करने का, धीरज रखने का ये सारा अभ्यास ही चला गया।
जैसे दीदी आपने बोला कि घर में बड़ों का होना जरूरी है, बट आजकल के टाइम में अगर घर में कोई बड़े हैं तो दूसरों को ऐसा लगता है कि बोझ है ये हमारे ऊपर, तो नहीं नहीं नहीं, इनको या तो अलग कर दो या हमें अलग कर दो, हमें उनके साथ नहीं रहना।
चलो
है।
अलग रहो, संस्कारों का टकराव हो रहा है, अलग रहो, पर कुछ राय तो लो, अनुभव तो पूछो। जब आपको खुद आवश्यकता है उस समय तो मार्गदर्शन लो। संबंधों का महत्व हमने नहीं समझा कि आज शादी करना माना एक नया परिवार बनाना, एक नई आत्माओं को जीवन देना, क्योंकि जो दो जुड़ेंगे वो फिर दो से चार भी बनेंगे।
और, आगे
और जब आप दूसरे के जीवन को अस्तित्व दे रहे हैं, जन्म दे रहे हैं, तो आगे आपकी कितनी जिम्मेवारी बनेगी, ये सारी गंभीरता, अंतर्मुखता जीवन से आज खत्म होती जा रही है। सिर्फ शरीर को एक वासना और भोग का साधन समझ के हमने भोग लिया और फिर बस स्वभाव संस्कार नहीं मिल रहे हैं तो अलग हो गए या खत्म कर दिया।
दीदी मुझे ये मैं सोचती हूँ कई बार, वो ये क्यों नहीं सोचते कि जो हम दूसरों के साथ कर रहे हैं वो हमारा टाइम आएगा तो हमारे साथ भी कोई ऐसा करेगा, तो इसको सोचते हुए उनको उनको अलग नहीं करना चाहिए, अपने बड़ों को अपने साथ ही रखना चाहिए।
अब जब जेल में पड़े हैं तब सोचेंगे
कि
और वो तो देरी हो गई, जीवन तो बर्बाद हो गए। इसलिए करने से पहले सोचना एक बहुत सुंदर वाक्य आपने कई जगह पढ़ा होगा कि सोच समझ कर करो, सोचने से पहले सोचो। ये क्यों हमें सिखाया जाता है, इसकी जरूरत है? कई बार हम अपने आवेगों, मन के आवेग संवेग के प्रभाव में, आवेश में आके सोचते हैं और करते हैं। अखबार में हर आए दिन ये किस्से आते हैं और फिर पश्चाताप के अलावा कुछ भी हाथ में नहीं रहता है। इससे तो अच्छा था थोड़ी धीरज रखते, खुद समझाते पत्नी को, माँ बाप को बताते,
बड़ों को
कई प्रयास कर सकते थे ना।
और इस केस में बड़ों का होना जरूरी था, अगर बड़े होते तो ये ऐसी गलती कभी होती ही नहीं।
परिवार में रहने से कुछ तो मर्यादा बनी रहती है, जब अलग हो जाते हैं अब कौन देखने वाला है, हम कुछ भी करें तो अपने मन में जो आया सो कर देते हैं, पर मन में जो विचार आया, इच्छाएं हुई, वो राइट है रॉन्ग है वो तो हम समझते नहीं ना। तो ये विवेक खत्म हो गया क्योंकि हमारी बुद्धि की शुद्धि नहीं रही। इसलिए जरूरी है कि योग करें, बुद्धि योग परमात्मा से जोड़े, ताकि बुद्धि सत्य रहे, शुद्ध रहे और पग पग पर जो निर्णय लेने हैं वो हम सही ले सके।
एक क्रोध जो गुस्सा इतना बढ़ गया है, उस इंसान ने अपनी वाइफ को मारा, ठीक है, एक बार चाकू मारा, उसने 18 बार चाकू मारा, वो भी अपनी वाइफ को, पत्नी को जिससे उसने शादी की थी। तो ऐसे कोई कैसे कर सकता है? ऐसे यकीन नहीं होते, क्योंकि जब हम टीवी में देख रहे थे, देख के रूह कांप गई थी। बट
मैं तो ये कहूंगी कि हम दर्शकों को भी अब गहराई से सोचना चाहिए, सिर्फ आश्चर्य और प्रश्न में नहीं जाना है कि ऐसे कैसे हो सकता है। हो रहा है, ये ऑलरेडी हो रहा है। इतना गुस्सा आज हरेक के मन में भरा है, इतनी वैर, घृणा, नफरत मन में भर गई है। ये सिचुएशन हमें सिखाती है कि अब मनोपरिवर्तन की आवश्यकता है। इतनी नेगेटिविटी जो भर रही है, उसका कारण है कि हमारा जो खुद के प्रति ध्यान होना चाहिए, सेल्फ डेवलपमेंट के प्रति जो ध्यान होना चाहिए वो नहीं है। हमने जीवन में पैसे को, चीजों को और विषय वासना को महत्व दिया है, पर हमने वैल्यूज को,
रिलेशन
और पावर्स को, संबंधों को महत्व नहीं दिया। ये इनर डेवलपमेंट की आवश्यकता है हमें जीवन में शांति से बैठने की, उस परम शक्ति परमात्मा से मन जोड़ने की फुर्सत ही नहीं, क्योंकि हम उसका महत्व ही नहीं समझते। तो मन में शांति आए, और शांति होगी तो धीरज, डिटैचमेंट, ऑब्जर्वेशन, ये सब जीवन में आएगा। जब शांति का अभ्यास ही नहीं रहा तो अविवेकी कार्य आप जल्दबाजी में करेंगे। इसलिए समाज के जो भी आज मुखिया हैं, रहनुमाएं हैं, जो नेताएं हैं, उन सबको जागना चाहिए और सोचना चाहिए कि समाज में अब कौन सी शिक्षा की आवश्यकता है। हम जीवन की जो वास्तविक आवश्यकता है कि उसके जीवन में शांति, प्रेम, धीरज, विवेक कैसे आवे, वो गुणों के विकास के प्रति हमारा प्रैक्टिकल कोई न नॉलेज है, न अभ्यास है, न उसका कोई मार्गदर्शन हम देते हैं। इसलिए आज इतनी हिंसा बढ़ रही, कहते ना एक भाजी मूली की तरह इंसान को काट के हम फेंक देते। मानव जीवन की कोई वैल्यू ही हमने नहीं रखी, जबकि एक तरफ हम ही कहते हैं कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है, मनुष्य जीवन हीरे तुल्य है। आज उसी जीवन की हमें कोई कीमत ही नहीं, क्योंकि हमें कीमत है अपनी इच्छाओं की, वासनाओं की, चीजों की। और जब हम अपने में शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद भरेंगे नहीं, तो हम दूसरे को टॉलरेट भी नहीं कर सके। और फिर हमारे अंदर हिंसा, वैर, द्वेष, घृणा, नफरत, यही नेगेटिविटी भरती जाएगी। इसलिए आध्यात्मिकता, योग अभ्यास की जीवन में जरूरत है। इस विश्वविद्यालय में हम यही सिखाते हैं। यहाँ भी कई परिवार के परिवार आते हैं, जब आते हैं तो कितने प्रश्नों को लेकर आते हैं, पर जब वो नियमित ज्ञान और योग अभ्यास करने लगते हैं तो उनके अपने अंदर शांति, सुख, आनंद, प्रेम, पवित्रता के गुणों का विकास होता है, तो अपने आप दूसरों से व्यवहार भी अच्छा हो जाता है।
बिल्कुल सही, क्योंकि आज क्रोध के कारण ही सब कुछ हो रहा है, गुस्से के कारण ही सब कुछ हो रहा है। जब हमारा गुस्से पे कंट्रोल हो जाएगा तो कुछ ऐसा होगा ही नहीं, और एक बड़ों का साथ होना बहुत जरूरी है।
जैसे अग्नि को खत्म करना है तो पानी चाहिए, शीतल जल चाहिए, ऐसे क्रोध अग्नि खत्म करनी है तो शांति की शक्ति चाहिए।
दीदी, जैसे आज आपने हमें बहुत अच्छी बात बताई, एक तो हमें अपने गुस्से को कंट्रोल करना है। गुस्सा तभी कंट्रोल होगा जब हमारे अंदर पवित्रता, शांति, आनंद होंगे। और दूसरा आपने एक चीज और अच्छी बताई कि हमें अपने बड़ों को साथ रख के चलना है, जो कि आज के टाइम में बड़ों को हम बिल्कुल भी साथ नहीं रखते। तो मैं समझती हूँ सबको ऐसा ही बनना पड़ेगा, तभी जाके हमारा क्रोध, हमारा गुस्सा खत्म होगा। तो दर्शकों, कल हम आपको इसी टाइम फिर मिलेंगे इसी प्रोग्राम में, आह्वान में। धन्यवाद।